नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा सहयोग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर 6वीं बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।